पिछले श्लोक में सूत जी से पूछा गया था कि सर्वश्रेष्ठ श्रेय क्या है, ये आप बताइए, और जो आसानी से हो जाए और ऐसा साधन जो श्रेय प्राप्त करा के ही माने। तो मान लीजिए सूत गोस्वामी कहें कि भाई आप तो बड़ा जटिल प्रश्न कर रहे हैं, बाद में पूछ लीजिएगा, देखा जाएगा बाद में। तो उस पे शौनक आदि से ऋषि कह रहे हैं, नहीं, प्रायेणाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंदा सुमंद मतयः मंद भाग्या ही उपद्रुताः। कह रहे हैं हे सभ्य अर्थात हे साधु सूत गोस्वामी जी, प्रायः इस कलयुग में प्रायः लोग अल्प आयुषः बहुत कम आयु वाले होते हैं। कलाव मतलब इस कलयुग में, अस्मिन् युगे इस युग में, जना मतलब लोग, और क्या दिक्कत है, मंदहा उनकी बुद्धि बहुत कम होती है, सुमंद मतयो न बल्कि मंद ही नहीं होती, बहुत मंद होती है, प्रमादी होते हैं, और मंद भाग्य और उनका भाग्य बहुत कम होता है, अर्थात उन्हें सत्संग प्राप्त नहीं होता है, और सत्संग प्राप्त भी हो तो उपाद्रता ही उपद्रता, मतलब वह बहुत सारे रोगों से विघ्नों से परेशान रहते हैं। अनुवाद, हे विद्वान, कली के इस युग में लोगों की आयु न्यून है, बहुत कम है, वे झगड़ालू आलसी पथभ्रष्ट अभागे होते हैं तथा साथ ही साथ सदैव विचलित रहते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर ये बेचारे लोग लंबे समय तक साधन ढूंढते रहेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा। पहली बात तो आप देखिए कि कलयुग में लोग साधन ढूंढते ही नहीं है श्रेय के लिए, तो और वह भी अगर बहुत लंबे समय तक ढूंढना हुआ और ढूंढ करने के बाद बहुत लंबे समय तक करना पड़ा तो कौन प्राप्ति करा पाएगा, कौन करेगा। तो स्पेशल असिद्ध स्वामी कहते हैं, अन्येपि बहुना काले न बहु शास्त्र श्रवणादिभिर विनिश्चवंतु नेत्याः प्रायणति। तो ये प्राय प्रायणा इति श्लोक से कह रहे हैं कि बहुत सारे अन्य शास्त्र हैं और उनको सुनने में बहुत समय लगेगा श्रवण करने में, और श्रवण करने के बाद भी फिर श्रेय क्या है उसको निश्चिन्वन्तु अर्थात विनिश्चित करना यह संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि लोगों की आयु कलयुग में बहुत कम है। हे सभ्य, आगे कहते हैं टीका में, हे सभ्य अर्थात हे साधु, अस्मिन् युगे इस युग में कलाव अल्पायुषो लोग बड़ी छोटी बहुत कम आयु के हैं, जनास तत्रापि मंदः और साथ साथ बहुत आलसी हैं, और मंद का मतलब यहाँ पे बता रहे हैं मंदा अलसा, अलसा मतलब मंद का अर्थ है बहुत आलसी हैं, भौतिक कार्य करने में तो आलसी है ही और आध्यात्मिक कार्य करने में तो बहुत ही आलसी हैं। देखिए ना, लोग माला कर उठाने में लोगों को इतना कष्ट होता है। तत्रापि सुमंदस यानी कि उनकी जो मति है बहुत उसके उसमें भी बहुत कमजोर है। मान लो कोई वक्त आलसी ना भी हो तो समझने में, आध्यात्मिक ज्ञान समझने में बड़ा कष्ट होता है, समझ नहीं पाता है वह, प्रमादी है, उनका मन जगह जगह फंसा रहता है। और मंद भाग्य, उनका भाग्य बहुत कमजोर है, बहुत मुश्किल है उनके लिए सत्संग को प्राप्त कर पाना किसी के लिए। और साथ और मंद भाग्य का एक अर्थ यहां बता रहे हैं विघ्ना कुला अर्थात उसमें बहुत सारे विघ्न, विघ्न कुला मतलब पूरे कुल के साथ विभिन्न प्रकार के विघ्न इस कलयुग में आते ही रहते हैं, और कुछ विघ्नों का तो हम स्वयं ही निर्माण करते रहते हैं। उपद्रुता का कहते हैं रोग आदि भी अर्थात नए नए रोग, ये तो आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से नए नए रोगों का निर्माण हो रहा है एक कृत्रिम जीवन शैली के कारण। तो जब इतने सारे परेशानियां हैं तो लंबे समय तक वो शास्त्र कहाँ सुन पाएंगे, तो इसीलिए वह बोल रहे हैं कि आप हमको सार में बताइए, जो वह सार भी बड़ी आसानी से समझ में आना चाहिए। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका। तो मान लीजिए सूत गोस्वामी कहें कि ठीक है, तो आप सार सुनना चाहते हैं तो आपको मैं सब कुछ सुनाता हूं, और फिर आप अपने आप ही निश्चय कर लीजिएगा कि सर्वश्रेष्ठ क्या है। तो इस पे ऋषि मुनि कहते हैं, हे साधु हे सभ्य, आप जानते हैं कि इस समय जो समय चल रहा है और ये जो स्थान है कलयुग, इसकी स्थिति क्या है। कलयुग में प्रायः लोग बड़ी कम उम्र के होते हैं, अगर भाग्यवश वह बहुत लंबी उम्र प्राप्त कर भी लें तो भी वह आध्यात्मिक विषयों में अन्वेषण करने के लिए, आध्यात्मिक विषयों में रुचि नहीं रखते, उसमें बहुत आलस करते हैं, और कदाचित वह आलस न भी करें तो समझ नहीं पाते। तो ये था मंदा मंदा मतलब आलसी, सुमंद मतया मतलब उनकी मति बहुत कमजोर है। तो ये एक स्वाभाविक है, आप देखेंगे कि आप प्रवचन दीजिए और लोग भूल जाते हैं कि उस प्रवचन में क्या बोला गया है, उसी प्रवचन को अगले हफ्ते फिर कहेंगे तो लगेगा अरे हाँ हम तो नई बात सुन रहे हैं। तब देख सकते हैं कि कलयुग में हम सबकी बुद्धि जो है बहुत कमजोर है, समझ नहीं पाते। और मान लीजिए कोई व्यक्ति बुद्धिमान हो भी तो भी वह मंद भाग्य है, क्योंकि उसे भक्तों का संग प्राप्त नहीं है जो उसे सर्वश्रेष्ठ साधन बता सकें, जिसके द्वारा सर्वश्रेष्ठ श्रेय की प्राप्ति हो। अच्छा, और अगर मान लीजिए कि वह भक्तों का संग उसे प्राप्त भी है तो भी उसे बहुत सारे विघ्न परेशान करते रहते हैं, कभी बीमारी हो जाती है या और अन्य सारी परेशानियां हो जाती हैं। तो इसलिए भक्तों का संग प्राप्त होते हुए भी वह भक्तों के मुख से उसे समय नहीं मिलता है कि वह भगवान के बारे में सुने, या अगर वह भगवान के बारे में सुनता भी है तो भी वह समझ नहीं पाता है कि मानव जीवन का परम श्रेय क्या है और उसको करने के लिए उसे क्या साधन करना चाहिए। अच्छा, ये एक और बात ये भी है कि इस क्रम में जो दुर्गुण बताए हैं इसमें हो रहा है कि भाई ये हो तो दूसरा नहीं हो, दूसरा हो तो तीसरा नहीं हो, तो तीसरा हो तो तीसरा हो जाएगा ऐसे। लेकिन एक अर्थ ये भी हो सकता है कि ये सारे गुण, सारे के सारे गुण सभी में हैं, मतलब वह अल्पायुषा भी होंगे, मंद भी होंगे, सुमंद भी होंगे, सुमंद मतयः भी होंगे, मंद भाग्या भी होंगे, उपाद्रुता भी होंगे। तो ऐसी स्थिति में ऐसा साधन बताना चाहिए जो सारे शास्त्रों का सार हो और वह श्रेय को प्राप्त कराने वाला निश्चित हो। एक तो बात हम इस श्लोक से जरूर सीख लेना चाहिए कि हम सब कलयुग के लोग हैं, तो ये सारे दुर्गुणों से हम स्वाभाविक रूप से युज्यमान हैं, मतलब हमारे अंदर है ही। तो इससे कम से कम थोड़ी नम्रता जरूर हृदय में आ जाना चाहिए कि भगवान के नाम के अलावा और कोई आश्रय हमारे पास है नहीं। श्रील प्रभुपाद जी बड़ी रोचक टीका लिखते हैं, कहते हैं कि भगवान के भक्त तो हमेशा ही सामान्य जनता के आध्यात्मिक कल्याण के लिए बड़े चिंतित होते हैं। हाँ, अद्भुत बात यह है कि जो सामान्य जनता है वह अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए बिल्कुल भी चिंतित नहीं होती। तो जो नैमिषारण्य के ऋषि थे उन्होंने जब कलियुग के लोगों की स्थिति देखी तब उनके मन में यह करुणा जगी और वो उनके लिए प्रश्न कर रहे हैं कि किस प्रकार से कलियुग के लोग भी भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बड़े सुंदर बात कहते हैं कि कलियुग में लोग इसलिए कम उम्र के नहीं है कि खाने को नहीं मिल रहा, अपितु अनियमित आदतों की वजह से है। जैसे महाभारत में एक वर्णन है, स्वयं भीष्मदेव कहते हैं कि कलयुग में एक कारण है लोगों की कम उम्र होने का, और वो है ये है कि वह सूर्य के उगने के बाद उठते हैं। जो व्यक्ति सूर्योदय होने से पहले स्नान कर लेता है वो स्वाभाविक रूप से स्वस्थ रहता है। प्रभुपाद जी भी इस बात को बोलते हैं कि साधारण खाना खा के जिसमें कोई मांस इत्यादि नहीं हो और नियमित जीवन जी करके व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है, लेकिन बहुत अधिक खाना, बहुत इंद्रिय तृप्ति करना और इस प्रकार से कृत्रिम जीवन जीने से व्यक्ति के मानव जीवन की जो शक्ति है वह खत्म हो जाती है और इस कारण से उसका जो मानव जीवन है वह छोटा हो जाता है। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि क्यों कलयुग में लोगों की उम्र जो है वो कम हो जाती है। दूसरे पैराग्राफ में श्रील प्रभुपाद ने बहुत अच्छी बात बताई कि प्रायः लोग इस समय न सिर्फ भौतिकता के प्रति आलसी हैं अपितु आध्यात्मिकता के प्रति भी आलसी हैं। मानव जीवन जो है वह केवल आत्म साक्षात्कार के लिए है, केवल आत्म साक्षात्कार के लिए। जैसे एक रेसिंग कार केवल रेसिंग के लिए है, उसे खेत में चलाने के लिए रखा नहीं जाता। तो अपना संबंध भगवान से न समझ कवारने के कारण मानव जीवन केवल व्यर्थ की श्रम में या व्यर्थ के संघर्ष में बीत रहा है। इतना बड़ा घर चाहिए, इतना बड़ा व्यवस्था चाहिए, अरे जितना जीवन जीने के लिए चाहिए वह तो बहुत कम आवश्यकता है, और अगर उसमें हम चला लें काम तो हमें बहुत कम मेहनत करने की जरूरत है और बाकी सारी शक्ति हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। उससे क्या फायदा होगा? शाश्वत लाभ प्राप्त होगा, भगवत धाम की प्राप्ति होगी। लेकिन मूर्खतावश हम ये समझ नहीं पाते। और एक सुंदर बात ये भी है, बहुत अच्छी बात प्रभुपाद जी कहते हैं कि आजकल की जो शिक्षा प्रणाली है वह लोगों के हृदय में आत्म साक्षात्कार की इच्छा को उदित ही नहीं होने देती है। तो अपितु जहां भी आत्म साक्षात्कार की बात आएगी तो उसको भ्रांति माना जाता है, एक भावुकता माना जाता है। तो ये बड़ा सतर्क रहना चाहिए। अब पढ़ाना तो घर में बच्चों को स्कूलों में ही पड़ेगा, लेकिन कम से कम घर में शिक्षा ऐसी हो कि व्यक्ति समझे कि मेरे जीवन का उद्देश्य जो है वह है मानव भगवत प्राप्ति है। और ये बहुत बड़ा लाभ है, अन्य योनियों में इस प्रकार की मुक्ति संभव नहीं होती है प्राय। अच्छा, अब मान लीजिए इस सारे शिक्षा प्रणाली में वो चला गया, ठीक है, लेकिन किसी तरह से अगर उसे मालूम चल गया कि मानव जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, तो भी उसको क्या कहा जाए, दिग्भ्रमित करने वाले बहुत सारे शिक्षक हैं। आप देख सकते हैं कितने सारे YouTube पे बहुत सारे लोग गीता भागवत पे प्रवचन कर रहे हैं, लेकिन बड़ी आसानी से कहा जा सकता है कि उनमें से कुछ ही लोग परंपरा में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो एक प्रामाणिक परंपरा में भगवद गीता और भागवत का ज्ञान दे रहे हैं। प्राय अपने मनगढ़ंत तरीके से वो देते हैं, और इस कारण से उनके जो जो उनके फॉलोअर्स हैं, ये जो उनके भी कह सकते हैं जो उनको पालन करने वाले हैं, उनके उनके जीवन में कोई विशिष्ट परिवर्तन नहीं आता, वह भगवत प्रबोध से प्रबोधित नहीं होते। तो ये एक और दिक्कत है कि अगर वह कोई व्यक्ति भागवत प्राप्ति करना भी चाहे तो सही मार्ग दिखाने वाले लोग कोई नहीं है। श्रील प्रभुपाद आगे कहते हैं कि इस समय लोग विभिन्न प्रकार के मतामत और समुदायों में तो बट ही गए हैं, साथ ही विभिन्न प्रकार के इंद्रिय तृप्ति के साधनों के कारण बहुत भ्रमित हैं। सिनेमा, खेल, जुआ, इस प्रकार की या भौतिकतावादी जो पुस्तकें हैं, असत्संग, बहुत सारे जो आजकल आप देख रहे हैं गलतियां, इस कारण से उपद्रता, उनका मन जो है वह हमेशा परेशानियों से घिरा रहता है। साथ ही साथ ऐसे लोग हैं जो अपने मनगढ़ंत तरीके के धर्म को स्थापित कर देते हैं जिसका आधार शास्त्र नहीं होता, वह उनका शुष्क ज्ञान ही होता है। और जो लोग इंद्रिय तृप्ति से बहुत आसक्त होते हैं वह इस प्रकार के कह सकते हैं संस्थानों के प्रति बहुत आकर्षित हो जाते हैं। तो इस कारण से, क्योंकि धर्म के नाम पे लोग बहुत सारे पाप कर रहे हैं, इस कारण से वह न तो उनके मन में शांति है, न उनका शरीर स्वस्थ रहता है, न तो ब्रह्मचारियों आश्रम को रखा जा रहा है ठीक प्रकार से, न ही गृहस्थ लोग अपने गृहस्थ आश्रम का पालन कर रहे हैं। और इससे कदाचित जो वानप्रस्थ और सन्यासी बाहर आते हैं ऐसे गृहस्थ आश्रम से, तो वह अपने नियमों का पालन नहीं कर पाते। बहुत सुंदर बात श्रील प्रभुपाद यहाँ कहते हैं कि कलयुग में अश्रद्धालुता यह सर्वत्र व्याप्त है। कोई व्यक्ति किसी पर विश्वास ही नहीं करता, कोई सोचता ही नहीं है कि कोई बात कोई व्यक्ति एकदम प्रमाणिक रूप से बोल सकता है। वो सोचते हैं कि हर व्यक्ति का अपना अपना मत है और अपना अपना मत अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस कारण से विभिन्न प्रकार के युद्ध हो रहे हैं और सारी आपदा है। तो ऐसी स्थिति में जब जबकि आध्यात्मिक मानदंड रखे नहीं जा रहे हैं, या अगर रखे भी गए तो उसको तरोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जा रहा है मानव समाज में, तो ऐसे में निमशारण की ऋषि जो है बहुत कह सकते हैं बड़े उद्वेग, उनको बहुत उद्वेग था या बहुत चिंता थी कि किस प्रकार से पतित आत्माओं को उद्धार किया जाए, और इसकी वह उसका समाधान शिला सूत गोस्वामी से पूछ रहे थे। ये बड़ा कठिन प्रश्न है, क्योंकि मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, बड़ा खराब केस है, तो बड़ा एक्सपर्ट डॉक्टर चाहिए ताकि बीमारी का इलाज कर सके।